एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार। सोचिए एक ऐसा इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी एक जादूगर रहा हो।
एक थिएटर डायरेक्टर।
हाँ, एक ऐसा डायरेक्टर जिसके एक इशारे पर मंच पर दिन और रात बदल जाते थे, किरदार जीते थे और मरते थे। वो अपनी दुनिया का खुदा था।
बिल्कुल।
अब 60 साल की उम्र में वो शोहरत, ताकत, पैसा, सब कुछ छोड़कर एकांत की तलाश में समुद्र किनारे एक वीरान घर में आता है।
लेकिन क्या हो अगर वो एकांत उसे शांत करने के बजाय उसके अंदर के सबसे बड़े राक्षस को जगा दे?
और वो राक्षस है उसका अपना अहंकार।
आज हम एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं, आइरिस मर्डॉक के 1978 में आए उपन्यास द सी, द सी पर।
और इसे तो प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार भी मिला था।
जी, और ये मर्डॉक की सबसे बेहतरीन रचनाओं में से एक मानी जाती है। बिल्कुल। और आइरिस मर्डॉक कोई आम लेखिका नहीं थी। वो एक दार्शनिक भी थीं और एक उपन्यासकार भी। उनका मानना था कि नैतिकता किताबों में नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी के छोटे छोटे फैसलों में बसती है, और ये उपन्यास इसी का एक जीता जागता सबूत है।
ये कहानी है चार्ल्स एरोबी की, उस जादूगर की जो खुद को समझने निकला था पर अपनी ही बनाई भूल भुलैया में खो गया।
तो कहानी शुरू कहाँ से होती है?
तो कहानी शुरू होती है चार्ल्स एरोबी के इस नए घर से, जिसका नाम है श्रेनकोट।
श्रेनकोट।
हाँ, और ये कोई खूबसूरत बीच हाउस नहीं है बल्कि चट्टानों पर बना एक अजीब डरावना सा घर है जिसे लहरें लगातार पीटती रहती हैं।
अच्छा।
चार्ल्स हमें बताता है कि वो लंदन की बनावटी दुनिया से तंग आ चुका है और अब एक तपस्वी की जिंदगी जिएगा।
एक मिनट, तपस्वी? मतलब किस तरह की तपस्या?
उसकी तपस्या भी बड़ी नाटकीय है। वो हमें अपने खाने के बारे में बड़े गर्व से बताता है, उबले हुए अंडे, समुद्री शैवाल, मतलब अजीब अजीब चीजें। बर्फीले ठंडे पानी में रोज तैरने जाता है। वो अपनी डायरी में लिखता है कि कैसे उसने शक्ति का त्याग कर दिया है।
जैसे कोई महान राजा स्वेच्छा से अपना सिंहासन छोड़ दे।
बिल्कुल वही।
मुझे तो ये त्याग कम और दिखावा ज्यादा लग रहा है। ऐसा नहीं लगता कि वो दुनिया से भाग नहीं रहा बल्कि दुनिया के लिए एक नया शो, एक नया नाटक तैयार कर रहा है।
हाँ,
जिसका अकेला दर्शक वो खुद है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही तो इस उपन्यास का सार है। उसका मंच लंदन के थिएटर से बदलकर श्रेनकोट आ गया है, लेकिन निर्देशक और मुख्य अभिनेता अभी भी वही है, चार्ल्स एरोबी।
हाँ।
वो अपनी डायरी में सब कुछ लिख रहा है, अपने संस्मरण। लेकिन धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसे आदमी की कहानी पढ़ रहे हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता।
मतलब
वो एक तरह से क्या कहते हैं,
अनरिलायबल नरेटर।
हाँ, अनरिलायबल नरेटर है वो, जो लिख रहा है जरूरी नहीं कि वो सच हो।
बिल्कुल।
वो सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर रहा है ताकि वो अपनी कहानी का हीरो बना रहे।
ये तो आज के सोशल मीडिया के दौर जैसा है ना, जहाँ हर कोई अपनी जिंदगी को एडिट करके एक परफेक्ट कहानी की तरह पेश करता है। चार्ल्स एरोबी तो बिना इंस्टाग्राम के ही एक इन्फ्लुएंसर वाली जिंदगी जी रहा था।
और उसका ये आत्मचिंतन का ड्रामा ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन गांव में उसे एक ऐसी महिला दिखती है जिसे देखकर उसकी दुनिया हिल जाती है।
कौन?
मैरी हार्टले फिच, उसका बचपन का पहला प्यार। 40 साल से भी ज्यादा हो गए हैं पर चार्ल्स के लिए जैसे वक्त वहीं ठहर गया हो।
और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेती है। शांति की खोज अब एक जुनून में बदलने वाली है। ये बड़ा अजीब है ना, 40 साल बाद कोई दिखता है और आपकी आपकी पूरी दुनिया पलट जाती है। क्या ये सच में प्यार है या बस
अपनी खोई हुई जवानी को दोबारा जीने की एक बेताब कोशिश?
बिल्कुल।
चार्ल्स तो इसे अपनी जिंदगी का सबसे सच्चा प्यार मानता है। वो फौरन तय कर लेता है कि हार्टली अपने पति बेन फिच के साथ एक बहुत ही दुखी और अपमानजनक शादी में फंसी हुई है।
मान लेता है।
और उसे बचाना अब चार्ल्स का मिशन है। संस्मरण लिखने का इरादा वो तो कूड़ेदान में चला जाता है, और उसकी डायरी अब हार्टले के जासूसी मिशन का रिकॉर्ड बन जाती है।
एक मिनट, उसे ये कैसे पता कि वो दुखी है? क्या उसने हार्टली से बात की?
नहीं, यही तो चार्ल्स के अहंकार की सबसे बड़ी पहचान है। वो कभी पूछता नहीं, वो मान लेता है।
अरे वाह।
वो हार्टले का पीछा करना शुरू कर देता है, उसके घर के पास घंटों खड़ा रहता है। जब हार्टले उसे देखकर घबरा जाती है या उसे दूर रहने को कहती है तो चार्ल्स अपनी डायरी में क्या लिखता है पता है?
क्या?
वो लिखता है, बेचारी मदद के लिए इशारे कर रही है पर कह नहीं पा रही।
ये तो ये तो बहुत ही डरावना है। मतलब वो एक जीती जागती 60 साल की औरत को नहीं देख रहा,
नहीं,
वो अपनी यादों में कैद उस 16 साल की लड़की को देख रहा है और उस याद को असली हार्टले पे थोपने की कोशिश कर रहा है।
बिल्कुल, वो असलियत को अपने नाटक की स्क्रिप्ट के हिसाब से एडिट कर रहा है। और मामला तब और उलझ जाता है जब चार्ल्स का अतीत भी एक एक करके उसके दरवाजे पर दस्तक देने लगता है।
अच्छा,
लंदन से उसकी पूर्व प्रेमिकाएं, एक गुस्सैल अभिनेत्री रोजीना, एक शांत स्वभाव की लिजी और कई पुराने दोस्त और दुश्मन, सब उसके इस एकांत में खलल डालने आ जाते हैं।
मतलब वो जिस अतीत से भागने आया था वही अतीत उसे घेर लेता है।
हाँ,
ये साबित करता है कि कोई भी इंसान एक द्वीप नहीं होता। आप अपने किए हुए कर्मों के नतीजों से भाग नहीं सकते।
सही बात है।
चार्ल्स ने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को इस्तेमाल किया, उन्हें अपनी कहानी का किरदार बनाया और फिर छोड़ दिया।
अब वो सारे किरदार हिसाब मांगने आ गए हैं।
और इन सब के बीच उसका हार्टले को लेकर जुनून बढ़ता ही जाता है, एक पागलपन की हद तक।
जब उसे लगता है कि हार्टले बातों से नहीं मानेगी तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जो कहानी को त्रासदी की तरफ धकेल देता है।
क्या करता है वो?
वो हार्टले को किडनैप कर लेता है।
रुकिए, क्या उसने सच में उसे किडनैप कर लिया? ये तो किसी फिल्म की कहानी लग रही है।
हाँ, और सबसे भयानक बात यह है कि वो इसे किडनैपिंग नहीं मानता।
तो क्या मानता है?
अपनी डायरी में वो इसे एक वीरतापूर्ण बचाव कार्य लिखता है। वो हार्टले को जबरदस्ती अपने घर श्रेनकोट ले आता है और एक कमरे में बंद कर देता है।
अरे बाप रे!
उसे पूरी उम्मीद है कि अब जब हार्टले अपने जालिम पति से दूर है तो वो उसकी बाहों में आ जाएगी और उसे धन्यवाद देगी।
ये आदमी तो सच में अपनी बनाई दुनिया में जी रहा है। उसे लग रहा है कि वो एक नाटक का आखिरी सीन डायरेक्ट कर रहा है जहाँ हीरोइन हीरो को पा लेती है। लेकिन असलियत तो कुछ और ही होगी।
असलियत बहुत भयावह है। हार्टले एक डरी हुई कैदी की तरह बर्ताव करती है। वो खाना नहीं खाती, बस रोती रहती है और उससे नफरत करती है। वो बार बार अपने पति बेन के पास वापस जाने की मिन्नतें करती है। चार्ल्स का पूरा रोमांटिक सपना एक बदसूरत घिनौनी हकीकत में बदल जाता है।
क्योंकि वो प्रेम है ही नहीं, वो कब्जा है, अधिकार है। प्रेम तो दूसरे की आज़ादी का सम्मान करता है।
सही कहा। और इसी उथल पुथल के बीच कहानी में एक ऐसे किरदार की एंट्री होती है जो चार्ल्स के लिए आईने का काम करता है।
कौन है ये?
उसका चचेरा भाई जेम्स एरोबी।
अच्छा, जेम्स।
हाँ, जेम्स वो चार्ल्स का बिल्कुल उल्टा है। जेम्स एक पूर्व सैन्य अधिकारी है जो अब बौद्ध धर्म की राह पर है। वो शांत, समझदार और आध्यात्मिक है। जब वो श्रेनकोट पहुंचता है और हार्टले को उस हालत में देखता है तो वो चार्ल्स को उसकी हरकत की भयावहता का एहसास कराता है।
तो मतलब वो चार्ल्स की कल्पना की दुनिया का पर्दाफाश कर देता है।
हाँ,
जेम्स का किरदार इस उपन्यास के फिलोसॉफिकल दिल की तरह है। एक जगह वो चार्ल्स से एक बात कहता है जो शायद इस पूरी किताब का सार है।
क्या कहता है वो?
वो कहता है, प्रेम ये महसूस करना है कि तुम्हारे अलावा कोई और चीज भी वास्तविक है।
Love is the difficult realization that something other than oneself is real.
क्या कमाल की बात है,
है ना? इसका मतलब क्या है, थोड़ा और समझाएंगे?
इसका मतलब है कि जब तक आप ये नहीं मानते कि सामने वाला इंसान आपकी कल्पना का पात्र नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं, अपनी कमियों, अपनी कहानी के साथ एक अलग और वास्तविक वजूद है,
तब तक आप उससे प्रेम कर ही नहीं सकते।
हाँ, आप सिर्फ अपनी ही बनाई हुई एक छवि से प्रेम करते हैं। और चार्ल्स इस परीक्षा में बुरी तरह फेल हो जाता है।
और फिर जेम्स की मदद से हार्टले आजाद होती है और अपने घर लौट जाती है।
तो चार्ल्स का बनाया हुआ नाटक बिखर जाता है।
हाँ, लेकिन इस नाटक की कीमत बहुत भारी पड़ती है। कहानी का अंत एक के बाद एक हादसों से होता है।
क्या होता है?
हार्टले का एक गोद लिया हुआ बेटा था, टाइटस। वो अपने घर से भागकर कुछ समय से चार्ल्स के साथ रह रहा था।
अच्छा।
वो अचानक समुद्र में डूबकर मर जाता है और ये साफ नहीं होता कि ये एक हादसा था या
आत्महत्या।
हे भगवान! इस सदमे के बाद हार्टले का पति बेन फिच भी गायब हो जाता है।
वो भी
मान लिया जाता है कि उसने भी खुदकुशी कर ली है। और हार्टले वो अपना घर बेचकर हमेशा के लिए वो गांव छोड़कर चली जाती है।
अच्छा।
चार्ल्स के एक जुनून ने एक पूरा परिवार तबाह कर दिया। और विडंबना देखिए, चार्ल्स खुद भी उसी समंदर में डूबते डूबते बच गया है जहाँ टाइटस डूबा था।
और उसे बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका कजिन जेम्स होता है।
ये एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जैसे समंदर वो प्रकृति की ताकत जिसे चार्ल्स कभी नियंत्रित नहीं कर सका,
आखिरकार उसके अहंकार पर अपना फैसला सुना रहा हो।
बिल्कुल।
उपन्यास के अंत में चार्ल्स को हार्टले का एक खत मिलता है। उस खत में हार्टले अपनी जिंदगी की असली उलझी हुई कहानी बताती हैं।
अच्छा, क्या लिखती है वो?
वो बताती है कि बेन के साथ उसका रिश्ता मुश्किल था, पर उसमें गहरा प्यार और एक दूसरे पर निर्भरता भी थी। वो एक परफेक्ट कहानी नहीं थी, पर वो उनकी अपनी असली कहानी थी। और उस खत को पढ़कर चार्ल्स की सारी कल्पनाएं टूट जाती हैं। उसे एहसास होता है कि उसकी महान प्रेम कहानी सिर्फ एक हिंसक वहम था,
जिसने तीन जाने ले ली। उपन्यास का अंत चार्ल्स के लंदन में अकेले रहने से होता है, जहां वो अपनी गलतियों पर सोच विचार करता है।
लेकिन यहां भी एक सवाल बाकी रह जाता है ना?
क्या
चार्ल्स सच में बदलता है? क्या उसे अपनी गलती का पूरा एहसास होता है, या वो खुद को बहलाने के लिए, अपने अपराध बोध से बचने के लिए एक और नई, ज्यादा बेहतर कहानी गढ़ लेता है?
मुझे लगता है कि लेखिका ने ये सवाल जानबूझकर हमारे लिए छोड़ा है, क्योंकि अहंकार इतनी आसानी से नहीं मरता।
हो सकता है कि वो अब भी अपनी त्रासदी को एक महान रोमांटिक कहानी की तरह ही देख रहा हो, बस जिसका अंत दुखद हुआ।
सही बात है, ये किताब हमें यही सिखाती है कि खुद के बनाए हुए धोखे के जाल से बाहर निकलना शायद इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है।
और वो समुद्र?
हाँ, पूरे उपन्यास में समुद्र एक किरदार की तरह है, कभी शांत कभी तूफानी। वो चार्ल्स के नियंत्रण से पूरी तरह बाहर है।
वो उस विशाल उदासीन सच्चाई का प्रतीक है, जिसके सामने इंसान का सारा ड्रामा, सारा अहंकार बौना पड़ जाता है। यह उपन्यास हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के राक्षसों, हमारे अपने अहंकार से होता है।
और ये भी कि किसी दूसरे इंसान को उसकी पूरी सच्चाई में, उसकी कमियों और उसकी जटिलताओं के साथ देखना और स्वीकार करना ही शायद प्रेम का सबसे कठिन और सबसे सच्चा रूप है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।